हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 6 और 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अकारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद सातवां अध्याय द्रोण पुत्र को दंड, श्लोक नंबर 6। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अदोक्षजे, लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अदोक्षजे, लोकस्या जानतो विद्वांश चक्रे सात्वित संहितां अनर्थोप शमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांश चक्रे सात्वत संहितां अनर्थोप शमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांश चक्रे सात्वत संहितां अनर्थोप शमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांश चक्रे सात्वत संहितां अनर्थोप शमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांश चक्रे सात्वत संहितां शब्दों का अर्थ अनर्थ अर्थात फालतू चीजें उपशमम बहिष्कार या निवारण साक्षात प्रत्यक्ष भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने की विधि अधोक्षजे ब्रह्म को लोकस्य सामान्य लोगों का अजानतः न जानने वाले विद्वान प्रकांड पंडित चक्रे संग्रह किया सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहितां वैदिक साहित्य अनुवाद जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं किंतु जन समूह इसे नहीं जानता इसलिए विद्वान वेदव्यास ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील वेदव्यास ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश भी सम्मिलित रहते हैं, अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियां अंतरंगा तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों को अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। एक यह महान दिव्य विज्ञान है जो और भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम का पुनः लाभ केवल श्रवण तथा कीर्तन पर अवलंबित नहीं होता अपितु केवल पूर्ण रूप से भगवान की अहितु की कृपा पर निर्भर करता है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्णतया प्रसन्न होता है तो वे उसे दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुति विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक अनुरक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान तो परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्त पर आश्रित होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोन्दीनतारणम्। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नारद मुनि के चले जाने के बाद शौनक मुनि ने सुत गोस्वामी से यह प्रश्न किया कि नारद मुनि के जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया, तो सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि वो अपने आश्रम में जो सरस्वती के किनारे पर, नदी के किनारे पर था, जिसका नाम था शम्य प्रास आश्रम, उसमें वो वैसे तो सदैव ऋषियों मुनियों की चर्चा चलती रहती थी, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री बदरी षंड मंडिते आसीनो उपप्रश्य प्रणिधद्यो मन स्वयं। उस समय उसने समस्त ये जो आ रहे थे सब डिवोटी, सब बातें कर रहे थे, उन सबको एक बोल दिया कि भाई मुझे अभी एकांत चाहिए, और वहां पर उन्होंने समाधि में खुद को स्थिर कर दिया। क्योंकि एक समय भक्त के लिए ऐसा होना चाहिए, भले ही कोई कितना ही भक्त हो, कितना ही प्रचार कर रहा हो, लेकिन कुछ तो समय उसे भी मिलना चाहिए जिससे वो भगवान के साथ वार्तालाप कर सके, भगवान के साथ प्रेम कर सके। हर वक्त डिस्टर्बेंस, एक तरह से डिस्टर्बेंस, गुरु भी शिष्यों के द्वारा बहुत कंटिन्यूस यदि शिष्य होते हैं साथ में, तो उसको अपनी साधना के लिए समय नहीं मिलता है। भले ही ये भी उनकी साधना होती है कि शिष्यों को सदैव ज्ञान देते, लेकिन एक समय ऐसा होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते थे कि साधारण लोग मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करते जितना कि मेरे अपने शिष्य मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो शिष्यों को भी सोचना चाहिए, जो भी है उन्हें सोचना चाहिए कि क्योंकि हमारे गुरु महाराज या हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, उन्हें भी आवश्यकता होती है कि एक समय ऐसा उनको भी एकांत का चाहिए कि वो अपने भगवान के साथ अपना प्रेम आलाप गा सके, प्रेम का ना संदेश भगवान तक पहुंचा सके, थोड़ा रो सके कृष्ण के साथ, थोड़ा उनको एकांत की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि वहां पर भी ऋषि नाम सत्रवर्धना, उस जो सरस्वती के किनारे पर उनका जो शम्य प्राश आश्रम था, सदैव निरंतर कुछ न कुछ चलता रहता था। तो अब उन्होंने खुद को आसीनोप उपस्पृश्य, खुद आसीन हो गए, समाधि में स्थिर हो गए, प्रणिधद्यो मना स्वयं, और अपने मन को एकाग्र किया। कैसे, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते, मन भक्ति योग के द्वारा, यानी ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, और इससे उनके हृदय की चंचलता, उनके हृदय का मल समाप्त हो गया। उपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम, और फिर समाधि में स्थित होने के बाद उन्होंने देखा, उपश्यत मतलब उन्होंने देखा, क्या देखा, पूर्ण पुरुष को, यानी साक्षात भगवान को देखा, भगवान जो कि संपूर्ण शक्तियों के मालिक हैं। तो उनके साथ साथ उनके भगवान हैं, तो उनके समस्त अंश भी होंगे सारे, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान और जीव में एक ही डिफरेंस है, क्या, भगवान पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो उधर भी पूर्ण है, भौतिक लोक में आते हैं तो भी पूर्ण है, उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो रह जाता है वो भी पूर्ण है। और जीव के अंदर यही है कि वो सदैव इनकम्प्लीट है, जीव पूर्ण नहीं है, जीव एक अंश है और भगवान पूर्ण है। तो भगवान को देखा, भगवान की समस्त शक्तियों को, उनकी अंतरंग शक्ति को, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, सबको देखा, और स्पेशली क्या देखा, मायाम च तदपाश्रयम, ये देखा कि जो माया है वो किस प्रकार से जीव को सम्मोहित कर रही है, यानी माया भगवान के अधीन है। उन्होंने देखा कि माया तो भगवान के अधीन है, यहाँ पर जैसे बताया मायाम से तदपाश्रयम, उस माया को देखा जो भगवान के अधीन है, और आगे क्या देखा, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मना, माया भगवान के अधीन है और माया के अधीन सभी देवियां सम्मोहित, सारे जीवों को माया सम्मोहित कर देती है। माया को भी देखा, भगवान को भी देखा। माया की विशेषता क्या बता रहे हैं? यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मन, जिस माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर आत्मानं त्रिगुणात्मन, वेद व्यास जी देख रहे हैं कि समस्त जीवों को माया सम्मोहित कर रही है, जिसके कारण जीव खुद को त्रिगुणात्मिक कहते हैं, त्रिगुणात्मिक समझ रहे हैं। परोपी मनुते नर्थ, हालांकि परोपी मतलब वो उससे परे है, दिव्य है। जीव भौतिक गुणों से लिप्त नहीं है, जो जीव स्वयं उससे परे है, लेकिन परोपी मनुते अनर्थ, फिर भी वो मान रहा है माया के प्रभाव के कारण। वो ये सोच रहा है कि मैं इस माया से इतना प्रभावित हो जाता है और अपने आप को त्रिगुणात्मिक तीनों गुणों में जकड़ा हुआ रियलाइज करता है। जीवों का सबसे बड़ा अनर्थ यही है। विश्व में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने आप को देह नहीं मानता। एक शक्ति भगवान की, बहिरंगा शक्ति, उसका जादू पूरे विश्व में चल रहा है और वेदव्यास जी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जीव माया जीव को बाध्य कर देती है। माया जीव को यह सोचने पर बाध्य कर देती है कि मैं ये शरीर हूँ, और देह में आत्मबुद्धि करने पर उसको समझा देती है कि तुम ही ये शरीर हो, तुम वास्तव में ये शरीर ही हो और इस शरीर के दुख सुख सब तुम्हारे हैं। तो परोपी मनोर्थ तत्कृत चाभिपद्यते, वो ये अनर्थ है, अनचाही वस्तुएं हैं। हालांकि आत्मा को इन भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो माया जो है उसके प्रभाव से जीव के अंदर ये अनर्थ आता है। फिर उन्होंने ये विचार किया कि चलो माया जीव को प्रभावित कर देती है, तो जीव का ये अनर्थ जाएगा कैसे? ये अनर्थ को खत्म करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो श्लोक नंबर सिक्स में बताते हैं, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। जीव का अनर्थ कैसे होगा? उपशमम मतलब बहिष्कार या निवारण। इस अनर्थ का निवारण कैसे होगा? अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। यदि जीव अधोक्षज भगवान, अधोक्षज का मतलब होता है अक्षज, मतलब ये इंद्रियां, अक्ष कहते हैं आंख को, और अध मतलब उससे परे, यानी वो भगवान जो हमारे इन भौतिक इंद्रियों से देखे जाने पर से परे हैं, यानी उन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधोक्षज भगवान का नाम है। तो कहते हैं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज, यदि जीव अधोक्षज भगवान में भक्ति योग उत्पन्न करता है तो ही जीव का यह अनर्थ जाता है। और वो क्या तरीका है? लोकस या अजानंतो, ये वास्तविकता जो साधारण जीव है, जो लोक है, वो अज्ञानी लोग हैं, वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं। किस ज्ञान को? कि हमारा यह अनर्थ, उसका उपशमन कैसे होगा? भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही हमारे ये अनर्थ समाप्त होगा। लोकस से अजानंतो, लोक इस गुह्य ज्ञान से अवगत नहीं है। और विद्वांस चक्रे सात्व संहिता, विद्वांस का मतलब होता है क्योंकि प्रकांड पंडित हैं वेद व्यास जी, बहुत विद्वान हैं, उन्होंने संग्रह किया। चक्रे मतलब संग्रह किया, इकट्ठा किया। किसको? सात्वत संहिता। सात्वत का मतलब होता है कृष्ण के भक्त, यानी वो शास्त्र जिसके अंदर भक्तों का हित हो। सात्वत संहिता, संहिता मतलब भक्तों के हित के लिए कोई शास्त्र उन्होंने संग्रह किया। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम जो है वो भक्तों का हित प्रदान करें, क्योंकि भक्तों का हित किसमें है? कि वो भगवान को स्मरण करें। जब भगवान को स्मरण करते हैं तो जीव का कष्ट दूर हो जाता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, क्या केवल भक्तों का ही कल्याण होगा, केवल भक्तों का ही? सात्वत संहिता, संहिता का मतलब होता है कल्याण करने वाला। एक ब्रह्मा जी का होता है ना ब्रह्म संहिता, तो संहिता का मतलब होता है ब्रह्मा जी ने जो कल्याण के सूत्र बताए हैं जीवों के, उसमें लिखे गए। और यहाँ पर भागवतम में क्या लिखा हुआ है, सात्वत संहिता, यानी भक्तों के कल्याण के लिए। तो क्या साधारण व्यक्तियों का कल्याण नहीं होगा? तो यहाँ पर लिखा उन्होंने कि लोकस्य अजानन्तो, तो अज्ञानी लोगों का कल्याण इसी से होगा, लेकिन वो समझते नहीं है। अजानन्तो, अज्ञानी लोग जो जीव संसार में दुखी हैं, उनका भी कल्याण तो भागवतम को श्रवण करने से होगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं। अनर्थो पर शमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, जब तक भगवान के अंदर भक्ति नहीं उत्पन्न होती है तब तक जीव का अनर्थ उपशमम होना संभव नहीं है। तो लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं, लोकस्य अजानन्तो, तो साधारण लोग इस बात को ना समझते हैं ना ग्रहण करते हैं, लेकिन जो भक्त जो इस सात्वत संहिता यानी भक्त भक्ति प्रदान करने वाले इस ग्रंथ को श्रवण करता है, तो उसका है ना कल्याण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये सब हमें बताना, मतलब जो भी ये हो रहा है वो सब वो देख रहे हैं। क्यों, कौन देख रहे हैं? वेद व्यास देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने देखा, जैसे हमने श्लोक नंबर 4 में पढ़ा, उपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा। अब ये उपश्यत शब्द जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। पहले किसको देखा? पूर्ण पुरुषोत्तम को। उसके बाद माया को भी उपश्यत, माया को भी देखा। जीव को भी उपश्यत, के जीव को भी देखा। जीव अपने आप को त्रिगुणात्मक देह मानकर माया के द्वारा सम्मोहित हो रहा है, ये भी देखा। और जीव का अनर्थ है ये कि वो अपने आप को ये देह मान रहा है, ये भी देखा। और यह अनर्थ कैसे उपशमन होगा? केवल और केवल भगवान की भक्ति करने से। और इसलिए उन्होंने सात्वत संहिता यानी श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। सात्वत संहिता मतलब ऐसा ग्रंथ जिसमें जिसको पढ़कर भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो, जिसके द्वारा भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो। तो श्रीमद् भागवतम किस तरह से भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कराएगा, तो वो आगे बता रहे हैं कि श्रवण करके, जैसे वो कहते हैं श्लोक नंबर 7 हम पढ़ेंगे अभी। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापह। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापह। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापह। शब्दों का यस्याम वै श्रूयमाणायाम, यस्याम मतलब यह वैदिक सहायत, वै निश्चय ही, श्रूयमाणायाम यानी श्रवण मात्र से, कृष्णे कृष्ण में, परम पुरुषे परम पुरुष भगवान में, भक्ति उत्पद्यते भक्ति की भावनाएं उत्पद्यते अंकुरित होते हैं, पुंसः जीव का शोक मोह भय अपाहा, शोक मना संताप, मोह मना गुमराही, भय यानी डर, उपहा यानी समाप्त, भोगने वाला, नष्ट करने वाला, भगाने वाला। नष्ट करने वाला। क्या अनुवाद देखिए, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना फूट निकलती है, जिससे शोक मोह तथा भय की अग्नि प्रशमित होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। जागते हुए मनुष्य शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन सुप्त होने पर कान ही रक्षा करता है। यहाँ पर जीव की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का प्रसंग में श्रवण का महत्व तीनों भौतिक तापों से मुक्त बताया गया है, मुक्ति बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने कल्पित शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूल लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील वेदव्यास ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्टी पुष्टि होती है। भक्ति का परम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम ऐसा शब्द है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र शब्द है जिसे भगवान कृष्ण तथा जीव के बीच के संबंध को उचित ढंग से सूचित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष कहा जाता है, अतएव भगवान तथा जीवों का प्रेम पुरुष तथा स्त्री के प्रेम जैसा ही है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, अतएव उनमें तथा उनके विषय में सुनी हुई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण द्वारा अविलंबित संपर्क होना, और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीव आत्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता अर्थात उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह का भ्रामिक बंधन वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न प्रकारों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह यानी भ्रम अनेक वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममयी बंध संबंध को विभाजित करता है, जिससे मनुष्य के प्रेममय संबंध बट जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनीतिज्ञों द्वारा उनके राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनीतिक या मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उनमें मोह तथा भय बना रहता है। अतएव राजनीतिज्ञों के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनीतिज्ञ भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकती जब तक हम कृष्ण के साथ अपने भूले संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते हैं। तब तक शरीर को आत्मा मानने का मोह यानी भ्रम बना रहेगा और इस तरह भय भी बना रहेगा। जहाँ तक भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे हजारों साक्ष्य हैं और वृंदावन नवदीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से लाखों प्रमाण प्राप्त हैं। कामोदी कोश में भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदा नंदन तथा परब्रह्म भगवान प्राप्त होते हैं। कहने का निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक शोक मोह तथा भय का अतिक्रमण करके जीव की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिससे श्रीमद् भागवतम का पाठ विनीत जिसने श्रीमद् भागवतम का पाठ विनीत भाव से वास्तविक रूप में सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील सूची बता रहे हैं कि श्रील वेद व्यास जी अपने ध्यान में देख रहे हैं कि जीव के इस अनर्थ का उपशमन कैसे होगा। अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगम अध्योक्षज, भगवान की भक्ति करने से। और लोकस या जानंतो विद्वांस चक्रे सातित संहिता, और इसलिए संपूर्ण लोकों के कल्याण करने के लिए सातवत संहिता को उन्होंने संग्रह किया। तो ये श्रीमद् भागवतम जिसको सातवत संहिता यहाँ पर कहा गया है उसको संग्रह किया। तो यहाँ पर प्रश्न होता कि भागवतम के द्वारा जीव का कल्याण कैसे होगा, तो उसका उत्तर देते हैं यस्याम वै श्रूयमायाम श्रूयमाणायाम। श्रूयमाणायाम का मतलब होता है केवल श्रवण कृष्ण परम पुरुष, केवल श्रवण करने से। श्रूयमाणायाम यानी सिर्फ श्रवण स्टार्ट करने से, केवल श्रवण श्रीमद् भागवतम का यदि कोई स्टार्ट कर लेता है, खाली अभी श्रवण चालू करता है तो कृष्ण परम पुरुष है, क्योंकि कृष्ण परम पुरुष है। भक्तिर उत्पद्यते, उन भगवान के प्रति जीव की भक्ति उत्पन्न हो जाती है केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण स्टार्ट करने से। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं केवल यस्याम वै श्रूयमाणायाम, केवल श्रवण स्टार्ट करने से यदि भक्ति उत्पद्यते तो किम पुनर्श्रुतायाम, यानी कि पूरा पूरा पढ़ लेने के बाद क्या होगा। जब भक्ति तो जीव का वास्तविक लक्ष्य है जिसको हमें प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम ही तो प्राप्त करना है। यहाँ पर प्रेम के विषय में श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया कि इस भौतिक जगत में प्रेम को सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के विषय में सोचा जाता है कि आपस में इनका जो संबंध है उसको प्रेम कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये प्रेम नहीं होता है, क्योंकि ये तो केवल एक जन्म का होता है। लेकिन वास्तविक प्रेम वो होता है जो कभी भी इसका अंत ना हो। और जीव क्योंकि प्रकृति है और भगवान पुरुष है, पुरुषम यहाँ पर जैसे बताया गया कृष्ण परम पुरुष, और ये जीव जो कि प्रकृति है वो वास्तविक, क्योंकि जीव की क्वालिटीज और भगवान की क्वालिटीज सेम है। जब कोई प्रेम करता है किसी से तो उसकी क्वालिटी सेम होती है। अब जीव क्योंकि आत्मा है तो शरीर के साथ प्रेम नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में हम जब भी किसी से प्रेम करते हैं तो शरीर की बात आती है, क्योंकि शरीर से ही प्रेम किया जाता है। वो पति है मेरा इसलिए प्रेम है, आत्मा समझ के नहीं प्रेम किया जाता, क्योंकि आत्मा किसी भी दूसरी आत्मा से प्रेम नहीं करती है। आत्मा का लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति है, कृष्ण से प्रेम करना है दूसरी आत्माओं के प्रति। उसको ये तो करुणा तो हो सकती है कि काश वो भी भगवान की भक्ति करें और भगवान को प्राप्त करें, ये तो जीव का क्योंकि शुद्ध वैष्णवों का स्वभाव है, लेकिन प्रेम नहीं कहते। जैसे भक्तों का भी संग किया जाता है, भक्तों से प्रेम नहीं कहा गया कि आपको भक्तों से प्रेम करना, भक्तों का संग किया जाता है ताकि कृष्ण से प्रेम विकसित किया जा सके। कोई कोई लोग बोलते हैं भाई हम भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, नहीं, भक्तों का संग होता है, भक्तों का आदर होता है, उनका सम्मान होता है, उनकी बात को हमें मानना पड़ता है, मानकर ही हम अपने जीवन को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए जीव को, चाहे किसी भी आप स्थिति में हो, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना जीव का लक्ष्य है। और ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर सुध गोस्वामी बता रहे यस्यम वैश्रूयमाणम, केवल श्रवण मात्र से भक्ति उत्पद्यते, हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण के जो कि परम पुरुष हैं उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर बताया कि जीव को बहुत सारी इंद्रियां मिलती हैं, कुछ कर्म इंद्रियां होती हैं, कुछ ज्ञान इंद्रियां होती हैं, परंतु उनके अंदर कर्ण इंद्री यानी श्रवण जिससे किए करते हैं वो इतनी बलवान है कि जीव भले सोया हुआ होता है तो भी जीव को जगाने का एकमात्र उपाय क्या है कि उसको उसके नाम से पुकारा जाए, उठो जागो ऐसे बोलते हैं ना, तो वो जाग जाता है। तो ये श्रवण इंद्री सोते हुए जीव को भी, यदि अभी कोई घर में हम सो रहे हो, कोई चोर आ गया हो, तो चोर हिला के नहीं जगाता, लेकिन अगर कोई जैसे खटखट की आवाज आएगी हमारे कान उस समय भी श्रवण कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, हमें जो कर्ण दिए ना, हमें सदैव भगवान से इसके लिए थैंक्स करना चाहिए कि कान ऐसे हैं जो सदैव सुनते हैं, सुन रहे होते हैं, और अगर उनको भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो गया तो फिर और जीव को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल श्रवण मात्र से भक्तिर उत्पद्यते। और भक्ति उत्पन्न होने से क्या होगा, भक्ति हृदय में उत्पन्न हो गई उसके बाद क्या होगा, इतना सुंदर बताया है, शोक मोह भय उपाहा। शोक यानी कि संसार में जीव को अनेक अनेक दुख होते हैं। दुख क्या होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है, तो शरीर से रिलेटेड समस्त व्यक्तियों और जो विषय हैं उनके प्राप्ति ना प्राप्ति संभालने के बहुत सारे शोक होते हैं कि ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त नहीं हुआ तो उसके लिए शोक होता है, प्राप्त हो गया तो उसके लिए चिंता होती है कि कहीं खो ना जाए। और मोह आसक्ति होती है कि ये ना, क्योंकि हृदय के अंदर एक मोह बना रहता है कि ये भौतिक वस्तुएं ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, और उसके लिए सदैव डर बना रहता है। जीव चाहे जिस भी योनि में चला जाता है वो उसी योनि के शरीर को अपना आप मानता है, और जब तक हम कृष्ण के साथ अपने भूले हुए संबंध को वापस स्थापित नहीं कर देते हैं तब तक हम शरीर को आत्मा मानने का मोह सदैव बना रहता है हमारे अंदर, कि जब तक हम अपने वास्तविक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध कृष्ण से है, तब तक तो जाहिर सी बात है तब तक हम अपने आप को शरीर ही मानेंगे और शरीर से रिलेटेड समस्त व्यक्तियों को ही अपना मानेंगे। तो एक भय बना रहता है कि ये कहीं खो ना जाए, ये वस्तुएं कहीं खो ना जाए। जहां तक भगवान के रूप में ना भगवान को जानना कि कृष्ण ही भगवान है, तो हर एक शास्त्र में भगवत गीता में भागवतम में भी जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि कृष्णस्तु एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, केवल कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ने से ही जीव का कल्याण पॉसिबल है, वरना तो उसका शोक मोह और भय कभी भी समाप्त नहीं होंगे। और कैसे समाप्त होंगे, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात है, यस्याम वैश्रूयमाणायाम। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है, उस समय से प्रारंभ होती है। प्रेम स्टार्ट होता है जब हम हृदय से चाहते हैं कि कृष्ण के लिए कृष्ण के बारे में कुछ सुने और श्रवण करने से हमारी आसक्ति भगवान के अंदर उत्पन्न हो जाती है। और ये श्रवण कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, भगवान तथा उनके विषय में सुनी हुई वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हम श्रवण कर रहे हैं बाद में भक्ति करेंगे, नहीं, श्रवण करना ही भक्ति है, श्रवण प्रथम भक्ति है, क्योंकि सुनी गई विषय वस्तु में भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, अतएव उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई वस्तु में कोई अंतर नहीं है। भगवान के विषय में सुनना ही भगवान का सानिध्य है, भगवान का प्रेम है, अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण द्वारा अविलंब संपर्क होना। और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करने करके तुरंत ही असर दिखाती। कौन से प्रभावों को? शोक, मय, मोह और भय को फौरन से हटा देती है, क्योंकि जब हम श्रवण कर रहे होते हैं तो भगवान के साथ डायरेक्ट से हमारा संबंध होता है। उसमें देर नहीं है कि भाई अभी ये पूरा भागवतम श्रवण कर लूंगी, उसके बाद में भगवान के साथ प्रेम करना शुरू करूंगी, नहीं, सद्यो रिद्य उसी समय यस्या वै श्रूयमाणायाम, जिस समय आपने श्रवण करना स्टार्ट किया उसी से भगवान, उसी समय आपका। ये अत्यंत ही सुंदर सुझाव है और जीवों के कल्याण का एकमात्र उपाय है कि हमें भगवान के विषय में श्रवण करके हृदय के अंदर भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि भले ही बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े पॉलिटिक्स विश्व में शांति के अनेकानेक उपाय खोजते रहे, लेकिन वो खोजते रहते रह जाएंगे, कभी भी जीव का कल्याण नहीं होगा जब तक कि भगवान के बताए हुए इन शब्दों पर अमल करके भगवान के इस श्रीमद् भागवतम का प्रकाशित नहीं होगा। तब समस्त जीव यदि शांति चाहते हैं, यदि सुख चाहते हैं, यदि वे चाहते हैं विश्व कल्याण हो, तो उसका एक ही उपाय है, क्या? कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया जाए और भगवान से अपने प्रेम संबंध को पुनः निर्माण किया जाए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी इन तीनों श्लोकों में जो अभी हमने श्लोक पढ़े हैं, इनमें श्रीमद् भगवद गीता के समस्त विषयों का वर्णन किया गया। ऐसे बता रहे हैं कि जितने भी भागवतम के जितने भी विषय हैं, उनको संक्षिप्त में इन इन श्लोकों में बताया गया है। क्या क्या बताया गया, हमने क्या क्या पढ़ा? चार श्लोक नंबर चार में पढ़ा उपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष के बारे में बताया गया कि कौन है वो पूर्ण पुरुष, जिसके मायाम च तदपाश्रय, कि जिसके आश्रय, ये जो माया है, संपूर्ण जगत बहिरंगा शक्ति जो है उसके आश्रय है। पहला क्या उन्होंने देखा है? पूर्ण पुरुषोत्तम को देखा, दूसरा माया को, और उसके बाद क्या देखा कि जीव जो है वो माया के मोह में गिरा, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मय, ये माया त्रिगुणमयी है, भगवान बताते हैं दैवी ये शागुणमयी, ये मेरी माया तीन गुणों से प्रभावित है और वो जीव को इतना सम्मोहित कर देती है कि वो अपने आप को तीन गुणों से मोहित समझता है। तो ये उन्होंने देखा, भगवान को देखा, माया को देखा, ये देखा कि जीव माया से किस तरह से मोह में गिरकर अनर्थ का शिकार हो गया है और इस अनर्थ का उपशम्य क्या होगा वो देखा कि अनर्थोपशम्य शम्यम साक्षात भक्ति योग अदोक्षजे, कि इस अनर्थ का उपशम्य तब होगा जब भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। और वो भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर बताया यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, के इसी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से परम पुरुष भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। और उसके बाद क्या होगा, शोक मोह भयापह, के जीव के हृदय में जितने भी शोक हैं, जितने भी भय हैं, जितना भी मोह है, उस सब का शमन इसी के द्वारा होगा, केवल और केवल यस्या वै श्रूयमाणायाम। तो यही सार है श्रीमद् भागवतम का कि जीव माया से घिरा हुआ है, जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, तो जीव का अनर्थ दूर नहीं होगा, जीव के दुख शोक क्लेश सब दूर नहीं होंगे। और यदि वो जब वो जीव श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना स्टार्ट करता है, उसी समय से शोक मोह अपाह, उसके सारे शोक मोह भयापहा, उसके सारे शोक मय मोह भय सब दूर हो जाएंगे और उसका कल्याण होगा, संतुष्ट होगा, उसे आत्म साक्षात्कार होगा और भगवत प्रीति प्राप्त हो जाएगी। और जब हृदय के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर कोई संदेह नहीं है कि कृष्ण के धाम में ना जाए। यानी कि भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। यदि तुम अपने हृदय में मेरे बारे में सोचोगे, मुझे प्रणाम करोगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी शरण में आओगे, मुझसे प्रेम करोगे, तो मैं आपको ये वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप मेरे पास आओगे। और जीव के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम, आदर सम्मान, कृष्ण की पूजा का भाव, कृष्ण के लिए समर्पण का भाव केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से उत्पन्न होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना ही जीव का एकमात्र, उसी से उद्धार होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।